آیت 30 کو دیکھے، وہ یا قومی، اور اے قوم، میری قوم. یہ جو میم کے نیچے زیر ہے نا، یہ اصل میں چھوٹی یا تھی، یا کا معنی ہوتا ہے میری، ٹھیک ہے. اے میری قوم، مَن ینصرنی من اللہ ان طردتہم، کون میری اللہ کے مقابلے میں مدد کرے گا اگر میں اہل ایمان کو نکال دوں. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم غور نہیں کرتے اگر تمہارے کہنے پہ یہ مخلص ساتھیوں کو میں ہٹا دوں اپنے پاس سے، جو تمہارے خیال میں رذیل ہیں، تمہارے خیال میں یہ کم پیسے والے، ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے، یہ گندے ہیں، یہ ویسے ہیں، تو بتاؤ کہ مجھے کل کون بچائے گا اللہ سے اگر میں نے ان کو ہٹا دیا. ترت تم کا روٹ کیا ہوگا؟ شاباش، تو رو دال، تا کہاں سے آ گئی؟ جی روٹ میں نہیں ہے، یہ صرف جھٹکے آپ کو اس لیے دیتی ہوں کہ آپ جاگ جائے، کیونکہ جو ہی ذرا سے مشکل حالات آتے ہیں نا تو بندے کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جب وہ جاگ جاتی ہیں. تو طارد کہتے ہیں دور کرنے والے کو، جیسے دھتکارنے کا معنی ہوتا ہے نا کہ میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا. اور پھر باقی رہ گئی بات، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں یہ کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے بڑے بینک بیلنس ہیں، میری بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے جس سے امپریس ہو جاؤ. نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ میرے اس کام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خزائن، خزانے کی جمع خزائن سے، پیچھے سارے لفظ ہو چکے اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لفظوں کو، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ آئے تو بعد میں ہینڈ ریس کر سکتے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تصدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں. اور حضرت نوح کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے، کوئی انفیریئرٹی ایکسپیریئرٹی کمپلیکس نہیں ہے کہ اگر تم مجھے چھوٹا کر دو گے تو میری عزت کم ہو جائے گی. کہا نہیں، تمہیں یہ چھوٹے لگتے ہیں، لگتے ہوں گے، مجھے یہ چھوٹے نہیں لگتے، اس لیے کہ یہ میرے رب کے بندے ہیں، میرے رب نے ان کو بنایا. تو تم حقیر جانو تو جانو، لیکن لئن یوتیہم اللہ خیرن، تمہارا خیال کیا کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے. دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کو ہم چیک کریں کہ ایک شخص کو ہم اگر کسی ذرا پرانے کپڑوں میں دیکھتے ہیں، گندے کی بات نہیں میں کرتی، بدبودار کی بھی نہیں کرتی، یہ ایک الگ چیز ہے، استغفر اللہ کہ ہم کسی کے بارے میں سوچیں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو کہ اگر کسی لمحے بھی آپ کسی بھی حال حلیے سے غریب شخص کو دیکھیں اور آپ کہیں بڑے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھی، مثال ہے ڈاکٹر کی دکان پہ گئے، پاکستان کا کوئی ڈاکٹر ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں، باری پہ سب نے جانا ہے، آپ بیٹھی تھی لائن میں، اب آپ کے بعد کوئی بالکل ایسی غریب حال ہولیے کی عورت آگے اور آ کے آپ کے ساتھ چپک گئی، تو ایک دم کیا ہوتا ہے؟ قسمت آتا ہے نا، ذرا سا پیچھے ہٹتے ہیں. اس کے برعکس ہم جہاز میں اور ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا کوئی شخص شراب پی رہا ہے، گندی تصویر دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال آتا ہے؟ یعنی یہ اتنی ہیومن سائیکالوجی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر رکھ دی کہ تز دری اعینکم، ہیں وہ نہیں گندے، تمہاری نظروں میں چھوٹے ہیں، تمہیں وہ اچھے نہیں لگتے، یہ گندے، یہ خستہ حال ہے. بعض لوگ آپ دیکھیے کہ کسی غریب کا جھوٹا نہیں پیتے، اپنے طور پہ دوسرے بڑوں کا پی لیتے ہیں، کوئی بڑا اچھا موڈ سکاٹ ہو. مجھے یاد ہے کہیں کوئی دعوت ایسی نا، تو اس میں بعد میں کچھ برتن تھے، کھانا وغیرہ کچھ تھا بچا ہوا، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے چھوٹا ہوا، تو مطلب وہ تو یہ سوچ رہی نا کس نے چھوڑا ہوا ہے، تو پلیٹ دیکھ کے کہنے لگے یہ کسی بڑے نائس بندے کی پلیٹ ہے تو میں کھا سکتی ہوں اس کا بچا ہوا. لیکن اگر آپ سوچیں کہ ہم اپنے ماسیوں کا یا دوسرے گھر میں جو صاف ستھرے جو پکاتے اور کھاتے ہیں، کیا ہم ان کے ہاتھ کا یا ان کا بچا ہوا کھاتے ہیں؟ ایک گلاس میں ہم اپنی دو دوستیں پانی پی لیں گے، ان کی نہیں، کہ جی ان کے دانت خراب ہوتے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے مہمانوں کے چیک کیے دانت؟ ان کے دانتوں میں کیویٹیز ہے؟ یعنی یہ وہ سوچ ہے جو بندے کو حقیقت میں بہت توڑ کے رکھتی ہے. اپنے دل کو چیک کریں، اگر ابھی تک ہمارے دلوں سے یہ چیز نہیں گئی نا کہ کالا ہے تو وہ ایسے ہی ہوگا اور گورا ہے تو بڑا اچھا ہوگا، امیر ہے تو بڑا ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ کا بھی لے لو، اس کا بچا ہوا بھی پہکھا لو، اس کا پترا ہوا بھی پہن لو، اور غریب ہے تو اس کو چھوڑ دو. اپنے اندر سے اس کو سوچیں، ماسیوں کا نام لے لیں، کچھ بھی لے لیں، یہاں تو دین کے رنگ میں بات ہو رہی ہے نا، لیکن اگر واقعی کوئی آج سچا مخلص شخص ہے، پانچ وقت کا نمازی ہے، روزے بھی رکھتی ہیں وہ عورتیں، تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہی ہو تو ہم اس کے ساتھ ایک لقمہ توڑ کے کھا لیں؟ کہتے لو بھائی اس کیا سکھا، بعض گھروں میں ماسیوں کے برتن الگ رکھے ہوتے ہیں، لوگ اس کے برتن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، کہتے ہیں الگ دھویا کرو، बस एक औरत है, अल्लाह ताला उनके लिए रहम करे, कोई बुरे नियत से नहीं कहती, लेकिन उनका दिल है, कहती काली औरत होती है तो मैं उसके हाथ से आटा नहीं गुंदवा सकती, एक राहत आती है। अभी उनकी नफासत हो सकती है, मैं नहीं कहती कि उनकी नियत बुरी है, लेकिन कम अज कम दीन के नाते से किसी को छोटा जानना ये ना इंसान करे। तुम कहते हो वो छोटे हैं, लेकिन अल्लाह ताला तुमको पता नहीं क्या कुछ देगा, क्योंकि अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाह को खूब पता है जो उनके नफ्सों में है। इन्नी ज़ल्लमिन ज़ालिमीन, अगर मैं तुम्हारे कहने पे इनको पीछे कर दूं, इनको हटा दूं, तो मैं तो बड़ा जालिम हो जाऊंगा। अब नूह अलैहिस्सलाम ने कोई बात झगड़े की? नूह अलैहिस्सलाम की बात में आपको आजिज़ी दिख रही है ना, लेकिन सुनिए जवाब आयत 32। قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا, ए नूह तुमने हमसे झगड़ा किया और इस झगड़े को बहुत तूल दिया। فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين, तो ले आओ हमारे पास उस अजाब को जिसकी धमकी तुम हमको देते हो। बताइए नूह ने क्या झगड़ा किया? कुछ भी नहीं। आज भी यही इल्जाम मिलता है, बहुत झगड़ना आ गया तुम्हें, बहुत जुबान खुल गई है, बहुत दलाइल देने लग गए हो। सीधी साधी दीनदार की बात दूसरे को झगड़ा लगती है। बस दफा उसी शख्स को बात समझाने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन वो उस बात से कायल होने की बजाय उसका जवाब ये देते हैं, अब चुप कर जाओ, हमारा सर न खाओ, अपने फलसफे बंद करो, आर्ग्यूमेंट न करो, बहस न करो, चुप करो, आज तक तो कभी नहीं बोली। ये स्टाइल इख्तियार करते हैं, ये भला किस चीज की गम्माजी करता है स्टाइल, ये कि जो दूसरा शख्स है ना उसके पास जवाब नहीं है कोई। जब कोई बंदा बात सुनना नहीं चाहता ना, तो उसके लिए सुनना भी दो भर होता है। चंद बातें सुनना उन पर दो भर था। टू मच, नो मोर दर्स, कोई नहीं जाएगा बाहर, आराम से बैठो। आप थोड़ी सी यानी किसी को दो चार बातें बताओ, क्योंकि ये तुम्हारी क्लास ने तुम्हें बहुत, तुम्हारी जुबान नहीं खोल दी, ये जब से कुरान पढ़ने लगी है तुम मेरे से डरती नहीं हो, बहुत जवाब देना आ गया तुमको। ये हर तौर का स्टाइल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीधी सादी बात को कह रहे, नूह आपने हमसे बड़े झगड़े किए। इससे पता चलता है कि हर दौर में लोग दीन के साथ झगड़ों को बड़ा जोड़ते हैं। जब से दीन की तरफ आए घर से लड़ाई नहीं जाती, नऊज़ु बिल्लाह। क्या अल्लाह का दीन झगड़े कराता है? तलाकें बहुत होती हैं, रिश्ते बड़े टूटते हैं। यही इल्जाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उस दौर में भी लगा था कि जब से आप आए हैं घर घर में झगड़े हैं, बीवियां गुस्ताख हो गईं, बच्चे चले गए, ये है वो नहीं करते, दिस दिस नहीं करते। और जो लफ्ज है ना जिदाल, ये जीम दाल नाम से है, एक दूसरे पर छा जाने के लिए बात करना, ओवरकम करना, दलील देते रहना। रस्सी बटने को भी कहते हैं जदलतुल हबल। इसमें भी आप देखिए कि खेचा तानी होती है ना, दो सिरे होते हैं रस्सी के, एक एक तरफ मुड़ रहा है, दूसरा दूसरी तरफ मुड़ रहा है। तो कहा कि नूह बस बहुत हो गई, अब हम तुझे और नहीं बर्दाश्त कर सकते। दलाइल के जवाब में लाजवाब हो गए, तो हक को कबूल करने की तौफीक फिर ना हुई, तो इल्जाम एक नया लगा दिया कि आप तो बड़े झगड़ालू हैं, जाए फिर लेके आए जो सुबह शाम हमें धमकियां देते हैं। इशारा था अजाब की तरफ। देखिए बंदे की मत मर जाती है ना जब, तो फिर वो खुद अपने ही लिए अजाब भी मांग लेता। यही स्टाइल पीछे हमें सूरत अनफाल में अबू जहल के कॉल में भी मिला था। इससे क्या पता चला कि कभी खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसे हालात हों तो खामोश हो जाए, समझ लें कि अभी वो बात आई नहीं कि जहां हिदायत की तड़प इनके दिल में इस तरह पे आई हो। कभी भी अपनी तबलीग को इस मोड़ पे ना लाइए कि दूसरा बंदा आपको कहने लग जाए कि आप बहुत जुबान खुल गई है। खामोश रहें, एक वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि आपकी खामोशी भी इनको खोलेगी, और जब वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो खुद ब खुद अल्लाह ताला फिर उनके दिल में कुछ ना कुछ तड़प जरूर इसकी पैदा करेगा। قال انما ياتيكم به الله, आपने फरमाया अल्लाह ही ले आएगा इसे तुम्हारे पास। यहां से फिर नूह का अकीदा देखिए कि अजाब भी अल्लाह ही के हुक्म से आएगा। ये जो इन्नमा यातीकुम बिही, क्या मतलब? जिस अजाब को तुम मांग रहे हो, जो वादा पूरा करवाना चाहते हो, मैं नहीं दे सकता, वो अल्लाह ही देगा इंशा, अगर वो चाहे। वमान तुम भी मोजिज़ीन, तुम आजिज करने वाले नहीं हो। कितना क्लियर अकीदा है नबी का, कोई क्रेडिट खुद नहीं ले रहे। अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, अच्छा करता हूँ अल्लाह से बात। कोई मान नहीं, कोई बड़ाई का दावा नहीं कि मेरी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, मेरी बड़ी चलती है अल्लाह के आगे, मैं करने वाला हूँ, मैं अल्लाह के आगे तुम्हें पेश कर दूंगा। हाँ मुझे बददुआ दे के जाते कहाँ हूँ। देखिये ये बिल्कुल इखबात वाली कैफियत इन आयतों में आपको दिख रही होगी कि इतना बड़ा नबी, 950 साल की तबलीग, लेकिन अंदाज में इतनी आजजी। आज जरा दीन की बात आए तो फौरन लोगों के जहनों में आता है कि अच्छा ये तो अब बहुत कुछ करेंगे, और फिर ऐसी बातें सामने आने भी लगती हैं। तो इससे क्या पता चला कि इंसान कभी भी अपने आप को कुछ ना समझे, मेरे हाथ में ना नफा ना नुकसान में। बाद लोग कहते हैं अच्छा हमें बद्दुआ देकर आपने जाना कहाँ है, मेरा दिल तोड़ा था ना इसलिए आपको सजा मिली। ये भी तकबर का जुमला है, मुझे आपने दुखाया ना देखिए आपको सजा मिली। नहीं ये बात ही नहीं होता, बंदा झुक जाता है, वो कभी नहीं ये सोचता कि अच्छा कि दुनिया में अगर मैंने कोई नेकी का काम कर भी लिया तो इसके नतीजे में फिर मेरे साथ कोई अच्छा काम होगा। हर चीज अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल हैंड्स अप, जिसको आप कह सकते हैं ना अपने हाथ उठा दे, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मेरा रब चाहेगा तो कोई काम होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। फिर और अपनी बेबसी और अपनी बंदगी साबित करते हैं, कहा वला यनफउकुम नुसही, और ना फायदा पहुंचाएगी तुम्हें मेरी खैर ख्वाही, मैंने पूरी कोशिश की कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि हिदायत देना या ना देना अल्लाह के हाथ में है, उसके हाथ में। नबी भी किसी को हिदायत नहीं दे सकते, इन अरदन सहलकुम, अगरचे मेरा इरादा ही क्यों ना हो कि तुम्हारी खैर ख्वाही करूं, इनकान अल्लाह यूरीद अयुगवियकुम, अगर अल्लाह की मर्जी ये हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दे, हुवा रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है, वइलैही तुरजाउन, और तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। देखिए कितनी बेबसी है, कितनी बेनियाजी है, मैं नहीं दे सकता हिदायत, मैं बुला रहा हूं, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं आओगे, कोई घुमंड नहीं, ना इल्म पर ना समझ पर ना तकवा पर ना तबलीग पर, जो कर रहे हो भुगतोगे, मैं बुला रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बुलाने के बावजूद भी इस बात से डरता हूं कि किसी लम्हे अगर मेरा कदम भी फिसल गया तो मैं भी गिर पड़ूंगा, इसलिए मुझे तो अपनी हिदायत की फिक्र है कि कहीं मेरा रब मुझे हिदायत से दूर ना कर दे। हुवा रब्बुकुम व इलैही तुरजाउन, वो तुम्हारा रब है, तुम जानो और वो जाने, मैं तुम्हारी मुसीबत सर पे क्यों लूं। ये अंदाज कब होता है, बिल्कुल आखिर में, जब बिल्कुल दूसरा बंदा सुनने को तैयार ना हो, तो कहा कि अब अल्लाह तुम्हें फहकाएगा, मैं नहीं तुम पे कोई फिक्र करता, गम नहीं करता। फला तब तो इसकी बात आ रही है ना आगे, कहा कि तुम इन पे गम भी ना करो। अब देखिए कि यहाँ एक छोटा सा सवाल उठ सकता है जो आपके जहन में शायद आए कि अल्लाह क्यों इनको गुमराह करे, आई यो भैया कुम, तो अल्लाह किसको गुमराह करता है, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि वमा युदिल्लु, नहीं अल्लाह तला गुमराह करता मगर इल्लल फासिकीन, नाफरमानों को करता है। जब कोई चीज अपनी अफादियत खो देती है, अपनी रूह खत्म हो जाती है उसकी, उसको फेंक दिया जाता है। आप देखिए लोग कहते हैं हाय कैसे होगा, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जब कीड़े मकोड़े मारते हैं, लाखों हजारों कीड़े मर जाते हैं हर साल इंसेक्ट्स किलर्स के जरिए, लोगों को तकलीफ होती, तो शुक्र करते हैं ना कि ये हसकम जहां पाक वाली कैफियत कि ये निकले और दुनिया साफ हो, मच्छर मारते हैं लोग, तो अल्लाह को ऐसे लोगों को मारते या उनको हिदायत से दूर करते बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार हो गए। जिस तरह जूस के खाने के खाली डिब्बे हम डस्टबिन में फेंकते हैं ना, ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत के रास्ते से उतार के गुमराही की डस्टबिन में फेंक देते हैं। अल्लाह अकबर, आप देखिए कि हमें वो रिश्ते कितने प्यारे होते हैं, हल्की चुनटी भी चढ़ी हुई किसी अपने रिश्तेदार पे, अपने बच्चे पे, माँ बाप पे देखें तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन क्यों उनको मनोमट्टी में जाके दबाते हैं, इसलिए कि अफादियत खत्म हो गई। तो जब किसी के दिल में हिदायत का कोई आखिरी चिराग भी बुझ जाए तो फिर अल्लाह ऐसे लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। वइलैही तुरजाउन, जब जाएंगे सारे पता चल जाएगा कि वहां क्या करते थे। अब यहां से अंदाज जो है थोड़ा सा बदलता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 35 को देखिए, अम यकूलू नफ्तराहू, क्या वो कहते हैं कि उसने घड़ लिया है, कौन कहते हैं और किसने घड़ा, ये सवाल है। या इसकी दो तफसीरें हैं, नंबर एक कुफारे मक्का कहते हैं नबी ने घड़ लिया इस कुरान को, अगर आप इस लफ्ज को देखें ना यकूलून, नंबर एक कुफारे मक्का, तो इफ्तरा क्या है कुरान, हु कौन है नबी, यानी क्या इस नबी ने ये कहानियां नूह की खुदी घड़ के हमें सुनानी शुरू कर दी, ये मुराद है। दूसरी इसकी तफसीर क्या है कि नहीं, यकूलून से मुराद है कौमे नूह, और हजरत नूह पर इल्जाम लगा रही है कि फी सुहुफ इब्राहिम व मूसा की तरह, जैसे सुहुफ सहाइफे नूह जो थे ये खुद ही घड़ के ले आए। यानी कुरान को खुद घड़ने के इल्जाम से बेजार हूं मैं। कुल इन इफ्तरैतहू, आप फरमाइए अगर मैंने इसको घड़ लिया, ये कहानियां मैं खुद ही घड़ घड़ के अपने दिल से सुना रहा हूं, तो फालैय इजरामी, तो मेरा जुर्म मेरे ऊपर है, मेरे खिलाफ पड़ेगा ये जुर्म। इजरामी जो है ना, ये वही लफ्ज है जो जुर्म मैंने उर्दू में बोला जीम रामीम से, कि अच्छा इतनी मेरी जरूरत है कि मैं अल्लाह के बारे में ये कह दूं कि ये किताब उसने भेजी है जो मैंने खुद लिखी हो, तो फिर इसका जुर्म इसका वबाल मेरे अपने ही ऊपर पड़ेगा। वाना बरीयुम, और मैं इससे बिल्कुल बरी जिम्मा हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मिम्मा तुजरिमून, उससे जो तुम जुर्म करते हो, जो तुम्हारी जिंदगी के रविश है, मैं इसकी तरफ नहीं देखता। कितना वाज़े अंदाज है, बता दिया कि तुम जो करोगे तुम्हें उसका गुनाह होगा और मुझे नहीं, मैं तुमसे बेजार हूं। यहां हमारे लिए अमल की बात है कि अगर कोई आप पर इल्जाम लगाए, इल्जाम तराशियों के जवाब में क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, वो इस आयत में पता चला। अब यहाँ बिल्कुल एक पीक पे है ना हजरत, आप जरा इमेजिन करें, देखिए ये बातें आपने बहुत दफा पढ़ी हैं और आगे भी बहुत जगह पढ़ेंगे, जरा इमेजिन करें आप, अल्लाह का एक बंदा कोई अपने माइंड में नक्शा बना लें, हजरत नूह का 950 साल की तबलीग और हर रोज की यही लड़ाई झगड़ा, तुमने ये कर दिया, तुम ये कहते हो, तुम ये कहते हो, तुम वो कहते हो, हमारे खुदाओं की बातें उनकी बातें सुन सुना के कर करा के, आखिर एक दिन तो फिर अल्लाह ताला की रहमत को जोश आना था ना। अब इसके अगला हिस्सा जो है ना, वहां से कहानी बदलती है, हुज्जत तमाम हो गई, जो इनको अल्लाह ने देना था दिया, लेकिन इन्होंने कदर ना की। अब हजरत नूह की जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है। हर नबी की जिंदगी में ये दोनों दौर आते हैं। पहला दौर होता है इंतजार का, डराओ, तबशीर, खुशखबरी, प्यार करो, मोहब्बत करो। मैं इसको ऐसे ही समझती हूँ जैसे कुरान की तरफ नए नए आने वाले लोग, जैसे आप शुरू में आते हैं, नए क्लासेस में होते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को बहुत बच्चों की तरह डील करते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप सोचें कि कुरान का सफर चलता जाए चलता जाए, किसी का रवैया ही ना बदले, वक्त पे आने की आदत ही ना पड़े, उसको काम करने की आदत नहीं, सबक याद करने की नहीं, तो ये जो 10 से 20 सारे पारे होते हैं ना, इसमें अंदाज में फिर जरा थोड़ी सी सख्ती आनी चाहिए और बेजारी भी आनी चाहिए। जाओ फिर, नहीं तो ना से, तुम्हारे नसीब में नहीं तो मैं क्या करूं, ये अंदाज है। लेकिन जब आखिरी दौर शुरू हो जाता है ना नबियों की जिंदगी का, कि जब कहना चाहिए हमारी जुबान में कि इन तिलों में अब तेल ही नहीं रहा, समझते इस मुहावरे को, तो फिर वो अल्लाह ताला के आगे हाथ उठा देते हैं। अब यहां से आगे आप पढ़ेंगे, बिल्कुल वही कहानी है, सिर्फ दोहराते जाएं तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला नबियों के साथ क्या मामलात करते हैं। फरमाया वह ऊ ही या इला नूह, और वही की गई नूह की तरफ, यानी नबी के पास जो भी हुक्म आता है वो अल्लाह की तरफ से आता है। क्या वही की गई, अन्नहु लयुमिन मिन कौमिका, हरगिज नहीं ईमान लाएंगे आपकी कौम में से लोग, मगर इल्ला मन कद आमना, मगर जो पहले से ईमान ला चुके, यानी अब एक नया बंदा भी नहीं आएगा आपके पास सीखने के लिए, ये मुराद है। जैसे आप कहें कि कुरान पाक का सफर शुरू हो चुका है, अब कुरान के अंत तक एक भी नया नहीं आना, जिनको आना था माशाल्लाह आ गए। ये बात समझाने के लिए बता रही हूँ कि अब कोई भी ईमान की तरफ नहीं आएगा, लिहाजा फला तब तइस बिमा कानू यफअलून, आप गम ना खाएं जो ये कर रहे हैं उस पर। यहाँ लफ्ज देखिए तब तइस, बा हमजा सीन इसका रूट है, बोस तकलीफ, बा सो गया। अब यहाँ तब तक इसका लफ्ज हमें क्या बताता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम की हालत पे गम खाते थे, होना क्या चाहिए था इधर, फला तगदब, ए नूह मत खाए इन पे गुस्सा। यहाँ से आप एक सच्चे दाई दीन की तलब पता चलती है, तड़प पता चलती है कि जब लोग हक के रास्ते को झुटलाते हैं तो वो गुस्सा नहीं खाता, गम खाता है, उसका दिल दुखा होता है, वो कहता है इनको अपनी भी फिक्र नहीं, इनको अपना मरना जीना भी याद नहीं, तो गम खाएं। यही नबी सल्लम की कैफियत है, फला अल्लाह का बाख नफ्स का, आप तो जिबा कर लेंगे, हलाक कर लेंगे अपने नफ्स को इस बात पर कि आपकी बात सुनते क्यों नहीं है। तो कहा मत गम कहिए। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत नूह में तो वाकई आंसू आ जाते हैं पढ़ते हुए हजरत नूह के जुमले, कितने प्यार से कहते हैं कि रब्बी इन्नी दाऊ तो कौमी लैलम व नहारा, अल्लाह मैंने इस कौम को अपनी कौम को सुबह शाम पुकारा, फलम यजिद हम दुआ इल्ला फिरारा, मगर मेरे पुकारने का तो असर यही हुआ कि ये भागने में ज्यादा हो गए। जितना मैं इनको बुला रहा था उतना ही ये भाग रहे थे, दूर हो गए थे। इतनी बातें, इतनी मुखालफत, इतनी दुश्मनियां, रूहानी कोफ्त की तरफ इशारा है जो हजरत नूह को होती थी, और अल्लाह अपने नबी को असल में यहां तैयार कर रहे थे कि नहीं मानते तो फिर ना माने, फिर अपनी जान को रोक लगा लें, दुखी हो जाएं। नहीं, इनकी किस्मत में ईमान की दौलत तो छोड़ दो, जहां बाकी जले मरेंगे खपेंगे ये भी चले जाएंगे। इनकी मोहलत का वक्त अब खत्म होने वाला है, और यहां अंदाज कीजिए कि ये मक्की दौर की आखिरी सूरतें हैं। अब यहां से अल्लाह के नबी को तैयारी की जा रही है कि अब गम ना करें कि एक साल के बाद अबू जहल मर गया तो आपके हाय मेरा रिश्तेदार था, नहीं गया तो गया, फला तब तो इस बीमा का नु फलून। इससे पता चलता है कि सच्चे दाई दीन को एक खास हद तक नसीहत करने के बाद अपने दिल पे वो गम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर बंदा कुड़ता है ना तो जलता है, और जलने से बीमार होता है, और दूसरों का हक भी मारा जाता है। बल्कि अब क्या करें, कुछ अमली कोशिशें करें। बस नायल फुल कभी आयुनीना, हमारी आंखों के सामने कश्ती तैयार करें। या बिया योनिना का मानी क्या है, हमारी वही की रोशनी में, हमारी इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में। अब यहाँ आप अपने इमेजिनेशन को जरा स्ट्रॉन्ग करें तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। कश्ती बन रही है, का ये नहीं मानेंगे, हुज्जत पूरी हो गई, जो कहना था कह दिया, जो बताना था बता दो। यहाँ से ये भी पता चलता है कि कश्ती बनाने का फन जो था वो इल्हामी था, अल्लाह ताला ने इल्हाम किया बंदे को कश्ती बनाना का तरीका। हमारी आंखों के सामने बनाओ, वहीना और हमारे हुक्म के मुताबिक, वला तुखातिबनी फिल्लजीन ज़लमो और न बात कीजिएगा मुझसे इन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, क्योंकि इन्नहुम मुग़रक़ून वो जरूर गरक कर दिए जाएंगे, इनका नसीब डूबना है। अल्लाह अकबर, जरा इमेजिन तो करिए हजरत नूह की क्या हालत होगी, पता चल रहा है कि अजाब आने वाला है, सब डूब जाएंगे, और देखिए जिन लोगों में बंदा रहता है वो अपने ही होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, कोई साथी होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं। क्या दिल चाहता है कि हमारे सारे बेदीन रिश्तेदार मर जाएं? सोचें, हमारा दिल चाहता है कि हमारे सारे बेदीन दोस्त जो मर जाएं, और मरे भी इतनी रुसवाई में कि उनके ऊपर अजाब आए। नबियों के हौसले कितने बड़े होते हैं कि अल्लाह पहले से उनको बता देता है कि आप हालात बिगड़ने वाले, लेकिन आप अपना काम करते रहे। और ये कैफियत जो थी ये बंदे के दिल पे बोझ लाती है, किसी को मरता नहीं आप देख सकते, चाहे आपके नेबर में कोई बेदीन मर रहा होगा ना, आपका दिल उस वक्त भी घुटेगा। मैं तो कहती हूँ 4 मिनट की खबरें सुन लें, आपका दिल बोझल होकर उठते हैं। मैंने तो जब खबरें सुनी देखी, मैं कहती हूँ ये देखते हैं आप घंटों, मैं तो कभी 2 माह बाद एक झलकी देख लूं, मेरा तो दिल बोझल हो जाता है। कितना दुखी करते हैं हम लोग अपने आप को, दिल पे असर आता है, इंसान नहीं रह सकता दूसरों को तकलीफ और दुख में देखकर खुश। तो यही कैफियत यहाँ थी कि अब आप कश्ती बनाइए। अल्लाह ताला ने बताया हजरत इब्राहिम नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते गए, कहा लेकिन मुझे ना कहिएगा कि अब उसको बचा ले और उसको बचा ले। नो फेवरेटिज्म, नो रिलेशनशिप्स, फला तुखातिब नहीं, खिताब भी ना कीजिएगा। अल्लाह ताला पहले से तैयार कर रहे हैं कि आपका बेटा आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के आने वाला है, तो मुझे ना कहिएगा कि इसको बचा ले। इससे क्या पता चलता है, अल्लाह के कानून बेलाग हैं, जो डूबने वाले हैं जिनके नसीब में डूबना है, फिर नबी के मामले में भी वो उनको डूबना ही होगा। और मुग़रक़ून जो ये मुग़रक़ की जमा है, गैन राक़ाफ। अब क्या हुआ, वह यस्नौल फुल्का और नूह कश्ती बनाने लगे। सना कहते हैं अच्छे तरीके से, महारत से बनाना, उर्दू में ये लफ्ज है ना सनत और हिरफत, वही लफ्ज है ये भी, यानी किसी चीज को बहुत मतलब अच्छे तरीके से उसको बहुत एहतमाम के साथ बनाना, यानी सनत और हिरफत का जो लफ्ज है, बड़े अच्छे तरीके से इसको बनाइए। वो बना रहे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती, वकुल्लमा मर अलैहि मलाउम बिम कौमिही, और जब कभी गुजरते उसके पास से उनकी कौम के सरदार, गुजरते तो होंगे ही, रस्तों में बैठे होंगे कहीं, कश्ती बनाता देखकर क्या करते, सहिरू मिनहु, तो आपका मजाक उड़ाते। अल्लाह अकबर, क्या कैफियत होगी, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, कश्ती बन रही है और दूसरे मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहते थे, इसके बारे में कुछ जुमले भी मिलते हैं, कि लोग कहते, अच्छा मियाँ ये बताओ पहाड़ों में ये कश्ती चलाओगे या मैदानों में? उस वक्त तो लोगों को नहीं दिख रहा था ना, पानी नहीं कुछ नहीं, ये तो अल्लाह पहले से तैयारी करा रहा था। और यहाँ ये भी पता चलता है कि बंदा मोमिन की फरासत होती है, वो वक्त आने से पहले तैयारियां करने शुरू हो जाता है। फिर एक मजाक ये भी हो सकता था, अच्छा जी कल तक तो नबी थे, अब खैर से बढ़ई भी बन गए आप। ये अंदाज, टॉन्टिंग स्टाइल। और हर दौर में दीनदारों को तो लोग बिल्कुल ऐसी ही बातें करते हैं कि जिसके बाद वाकई उनको किसी भी तरह से लट डाउन कर सकें कि भाई ये क्या कुछ होने लग गया, अब ऐसे काम भी करने लग गए हो। कहा बस ठीक है, अपना काम करते रहे, किसी को कुछ ना कहा, उड़ाते हो तो फिर उड़ाते रहो। बस एक बात कह दी, काला इन तस्खरू मिन्ना, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाओगे, फइन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून, एक दिन हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जिस तरह तुम मजाक उड़ाते हो। फसौफ़ तअलमून, पस अन करीब तुम जान लोगे कि मैं यादी ही अजाब हुई युख्जी ही, कि किसके पास आता है वो अजाब जो उसको रुसवा कर देगा। वयहिल्लु अलैहि अजाबुम मुकीम, और कौन है कि उतरता है उस पर अजाब हमेशा रहने वाला। इन जुमलों में भी कुछ बातें हमारे लिए नसीहत की हैं। पहली बात यह है कि ऐसे लग रहा है कि हजरत नूह ने काम करना नहीं छोड़ा। मेरे जहन में बिल्कुल ऐसे ही आता है कि बहुत एक बूढ़ा सा शख्स है, कश्ती बना रहा है, रास्ते में बैठा है जैसे रोड के किनारे पे, आप सोच लें फुटपाथ। अब उसको अपना काम करना है, तो आते जाते लोग जुमले कस रहे हैं। तो पहली बात है कि हजरत नूह ने ये नहीं किया कि काम छोड़ दिया, यस नाउ हाल और मुजारे दोनों में तो अपना काम करते रहे, फोकस थे। फिर दूसरी बात है कि नूह ने ये बात क्यों कही कि हम भी मजाक उड़ाएंगे, क्या नबी भी मजाक उड़ाते हैं? इस पे मुफस्सरीन ने बात की है कि नूह का ये कहना कि एक दिन आएगा कि हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ये कौन सा मजाक था? तो एक तो इसमें राय है कि जिस दिन अजाब आ जाएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, जुबाने काल से नहीं, यानी जुबान से नहीं, लेकिन जुबाने हाल से हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे होंगे उस वक्त। और दूसरा इसमें जो बात कुरान पाक में हमें मिलती है बहुत ही खूबसूरत, और वो क्या है कि कल क्यामत के दिन जब अल्लाह ताला मोमिनों को बिठाएगा मसनदों पे, सूरत मुतफ़फ़ीन की आयत 21 में आता है कि फल यौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फार यदहकून, बस आज के दिन ईमान वाले कुफ्फार पर हंस रहे होंगे, अलल अराही की यंजुरून, तख्तों पे बैठे होंगे। हल सुब वल कुफ्फार मा कानू यफ़लून, क्या कुफार को उनके आमाल का बदला दे दिया गया? तो ये वो मजाक है, यानी कल जहन्नुम में जब तुम जलोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। और इसी तरह ये बाप मुशाकिला भी है, तीसरी राय लिख लें। मुशाकिला पीछे कई दफा बताया कि अल्लाह को वो धोखा देते हैं तो अल्लाह भी उनको धोखा देता है, तो अरबी जुबान में ऐसे ही होता है कि जब कोई ये काम कहता है तो दूसरा जो है उसके जवाब में वही काम कह देता है, करना नहीं होता लेकिन करते हैं। अब ये कश्ती कौन सी थी, कैसी थी, इसके बारे में आज भी कुछ ना कुछ चीजें हर दौर में सामने आती रहती हैं, हम आगे जाके इसको देख लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये 300 गज लंबी और 50 गज चौड़ी और 3 मंजिला जहाज था, दरवाजे इधर से भी खुलते थे उधर भी खुलते थे, यानी आज के आप बड़े बड़े बहरी जहाजों को देख लें तो असल में ये उसी चीज की एक अगली लेटेस्ट किस्म की चीज है। कहते हैं कि आज के दौर में जितनी ये गाड़ियां और ये सब कुछ हुई है, इस सब के अंदर यानी हजरत नूह की उसी कश्ती से ही आइडिया लिया गया कि ख्याल पैदा हो गया कि वाकई फिर ये सारा कुछ पॉसिबल है। आप ये कह सकते हैं कि जो शख्स आइडिया दे देता है तो फिर वो काम जो है उसके बाद होने भी लगता है। बहरहाल अब क्या होगा, अजाब आने की तैयारियां हैं। हत्ता इजा, यहां से आप टॉपिक फौरन लिख लिया करें अगर आयत के ऊपर कि अजाब आता है। हत्ता इजा जा अमरुना, यहां तक कि जब आ गया हमारा हुक्म, कौन सा हुक्म, अजाब का। वफारत तन्नूर, तो उबल पड़ा तन्नूर। अब ये तन्नूर क्या था इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं, इसको जरा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तन्नूर कहते हैं सतह जमीन को भी, यानी ये जो जमीन की ऊपर का क्रस्ट होता है ना, इसको भी तन्नूर कहते हैं, और रोटी पकाने के तन्नूर को भी तन्नूर कहते हैं। बस कहते हैं कि इससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक तन्नूर मुकाम था, कुछ उसका नाम भी है, मुल्क शाम का एक हिस्सा है, वहां से पानी निकलने लगा। बास कहते हैं कि सारी दुनिया के जमीन के जो घड़े थे ना, खड्डे, वहां से पानी निकलना शुरू हो गया था। और हजरत इब्ने अब्बास ने जो बात कही है वो ज्यादा समझ आती है, कि कहने लगे कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह से फरमाया था कि आप देखें कि जब आपके घर के तनूर से पानी उबलने लगा तो समझ लें कि तूफान आ गया। यानी ये कैसा तूफान था कि आसमान से बारिश भी बरसती थी और जमीन से पानी भी निकला था। तो लिहाजा एक अलामत बता दी गई कि जब तंदूर से पानी निकले तो समझ लें कि अब आपको यहां से हिजरत करना है, यहां से निकल जाइए। आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि फफतहना वाबस्समाए बिमाए मुनहमिरिम वफज्जरनल अर्द उयूना, कि हमने आसमान के दरवाजे मूसलाधार बारिश के लिए खोल दिए और जमीन से चश्मे ही चश्मे फूट पड़े। दोबारा मुख्तलिफ लोगों ने इसके बारे में मुख्तलिफ बातें की, लेकिन तूफान शुरू हो गया। कुल नहमिल फीहा, तो हमने कहा दाखिल करो, सवार करो इसमें। हाँ क्या है? कश्ती, पुल्क। क्या सवार करो? मिन कुल्ली ज़ौजैनि इस्नैन, हर जिन्स से नर और मादा दो दो। चूंकि आगे दुनिया चलानी थी ना, तो हर कपल को पेयर को ले लिया, मुजक्कर मुअन्नस, इंसान तो उनके साथ जो थे ही। बस जैसे जानवरों की बात करते हैं, परिंदों की, और इसी तरह जो चीजों को अल्लाह ताला ने आगे रखना था उन सब के जोड़ों को रखते जाओ। जोड़ा रखने से भी यहाँ इशारा आप देख लीजिए कि नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके। वह अहलकम, और अपने घर वालों को भी बिठा लो। हाँ मगर इल्ला मन सबक अलैहिल कौल, सिवाय इनके जिन पर हो चुका है कौल साबित। वमन आमना, और सवार कर लो उनको जो ईमान ले आए। वमा आमना माहु इल्ला कलील, और ना ईमान लाए उसके साथ मगर थोड़े। कितने थोड़े थे ये? सिर्फ 80 के करीब लोग थे। तीन बेटे थे इसमें इनके अपने, साम, हाम और याफिस। तीन बीवियां भी थी उनकी साथ। चौथा बेटा जिसका नाम याम था और लकब किनान था, वो कुफार के साथ रह गया, जिसका तस्करा आगे आ रहा है। लेकिन यहां से आप कुछ चीजों को देखिए कि पहली बात है कि असबाब का इख्तियार करना। कश्ती बनी, लोगों को सवार किया, फिर बचे। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ये सब कुछ करना है। फिर दूसरी बात आयत 39 में देखिए, वयहिल्लु अलैहि अजाब मुकीम, कि किस पर उतरता है अजाब हमेशगी वाला, तो यहां इशारा है अजाब कब्र की तरफ। सूरह नूह की आयत 25 में भी आता है, मिम्म खतियाति मुगरिकू फदखिलू नारा, जब वो उदखिलू नारा तो उनको आग में दाखिल कर दिया गया। पानी में डूबे थे लेकिन आग में जाएंगे, जिस तरह के फिरौन के साथ हुआ। सूरत मोमिन की आयत 44-45 में भी यही बात आती है कि अन्नार युग्रदून अलैहा बुकरतम वाशिया, कि वो आग जिस पर ये सुबह शाम पेश किए जाते हैं। तो कौमे फिरौन और कौमे नूह में ये मुमासलत है कि ये दोनों कौमें डूब के मरी थी पानी में, जिसके बावजूद आग में जाएंगी। मेराज की रात भी अल्लाह के नबी ने ये सब कुछ देखा था। ये जो लफ्ज तनूर है ना, इसका रूट क्या होगा? नूर से और नार से, आग की तरफ इशारा है ना, तनूर के अंदर आग होती है। तो नूर और नार से, ये असल में फारसी जुबान का लफ्ज था जो अरबी जुबान में आ गया। हर जगह कुछ ना कुछ लफ्ज दूसरी जुबानों के होते हैं, और पानी के इकट्ठा होने की जगह को भी तनूर कहा जाता है। आज भी इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ जगह रखी हुई है, जिससे हमें फायदा इतना मतलब नहीं, इसलिए मैं वो आपसे शेयर नहीं करती। आप जरा इमेजिन करें इस वक्त जो हमारे पास ग्लोब है, आज जो ग्लोब है ना, उस दौर के ग्लोब से फर्क था। पहले खुश्की के टुकड़े मिले हुए थे, बाद में ये तूफान नूह के बाद कहते हैं कि ये पानी मिला, कि आज एक ओशन के साथ दूसरा होता है और उसके बाद तीसरा होता है। और कहते हैं कि हर मजहब में जमीन पर एक बहुत बड़े तूफान का जिक्र जरूर मिलता है, और हमारा ईमान वो ये है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर था। अल्लाह कैसा वो दौर होगा, आप एक लम्हे के लिए सोचे, एक छोटा सा भी सैलाब आता है तो क्या उसके बाद कैफियत होती है। और अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशों से बचा के रखे। अब यहां से आगे एक बिल्कुल दिलसोज अंदाज है, मैं चाहूंगी कि यहां से पिछली चंद आयात की तिलावत और फिर हम आगे चलेंगे। यानी बिल्कुल दिल बोझल हो रहा है इस वक्त ये सोचकर कि पूरी इंसानियत को इसमें डुबोया जाना है, ये हलाकत की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी तख्लीक का मकसद नहीं पहचानते, फिर अल्लाह ताला उनको जमीन पर रहने नहीं देता।
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.